परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से होशे नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है छुटकारा देने वाला। श्रोताओ, हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले आइए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और परमेश्वर की दया से फिर से आज परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए अपने प्रियों के साथ तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी हम अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त करेंगे। मित्रों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम इन दिनों बाइबल में से होशे नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और हमने इसराइल के जीवन में देखा है कि किस प्रकार इसराइली परमेश्वर से दूर थे और यहाँ तक कि वे परमेश्वर के निकटता में ना आकर वे अनादर का काम कर रहे थे, यहाँ तक कि वे अपने पापों के लिए घमंड करते थे। मेरे प्रियो, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर होशे नबी की पुस्तक के द्वारा मुझे और आपको क्या सिखाना चाहता है। तो इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आज आपने फिर से हमें यह अवसर दिया है कि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि हमारे जितने भी श्रोता भाई बहन हैं जो अलग अलग स्थानों पर बैठकर अपने रेडियो के साथ आपके वचनों में से सुनने के लिए तैयार हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप उन पर अनुग्रह करें, उन्हें बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब वे आपके वचन को सुने तो आपका वचन जीवंत रूप में उनके हृदयों में बोलने और बातचीत करने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, उनकी आप सहायता करें जो इस समय बीमार अवस्था में हैं, निराश और परेशान हैं, चिंतित हैं, तनाव और दबाव में हैं, यहां तक कि वे अपने जीवन को समाप्त करना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप उनके हृदय से बातचीत करें, ताकि वे इस बात को समझ सकें कि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनकी आवश्यकताओं को समझते हैं। आज आप उनकी सहायता करना चाहते हैं। पिताजी, आज के इस अध्ययन पर हम आपकी आशीष चाहते हैं, धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। विनती अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आइए आप मेरे साथ होशे नबी की पुस्तक 4 अध्याय और उसके 9 पद को पढ़िए। होशे नबी की पुस्तक 4 अध्याय उसके 9 पद में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जो प्रजा की दशा होगी वही याजक की भी होगी, मैं उनके चाल चलन का दंड दूंगा और उनके कामों के अनुकूल उन्हें बदला दूंगा। मेरे प्रियो, दुख की बात तो यह थी कि इसराइल के याजक प्रजा के स्तर पर गिर गए थे। कहने का तात्पर्य है कि वे भी प्रजा के स्तर तक गिर गए थे, उनका जीवन, उनका आचरण भी आम जनता के समान था। अपनी सेवा के आरंभ में मैं एक जैकेट पहनता था। मेरे मित्र ने एक दिन मुझसे कहा कि मैं उस जैकेट में ऐसा दिखता हूं जैसे गधा सफेद दीवार के ऊपर से झांक रहा हो, अतः मैंने एक आम मनुष्य के समान कपड़े पहना था और पहनना आरंभ कर दिया था। यद्यपि मैं एक साधारण मनुष्य से भिन्न नहीं हूं, मैं सांसारिक मनुष्य के स्तर पर आने की अपेक्षा परमेश्वर का वचन सुनाना चाहता हूं। मैं प्रचारक मंच से उतरने के बाद एक सांसारिक मनुष्य नहीं बनना चाहता। एक बार एक विश्वासी अपने पादरी की प्रशंसा में कह रहा था, हमारा पादरी साहब हमारे साथ फुटबॉल खेलता है, यह तो अच्छी बात है, परंतु उसने आगे कहा, खेलने के बाद वह हमारे साथ शराब भी पीता है, वह हमारे साथ घुल मिल जाता है, मुझे उसका यह स्वभाव अच्छा लगता है। मैं सोचता हूं कि परमेश्वर उसके बारे में क्या सोचता होगा। जैसा कि हम लोग सुनते हैं, यथा राजा तथा प्रजा, इसलिए जो प्रजा की दशा होगी वही याजक की भी होगी। मैं उनके चाल चलन का दंड दूंगा। मेरे प्रिय मित्रों, यदि आज आपका जीवन भी एक परमेश्वर के दास के समान नहीं है, तो निश्चय जाने कि वह आपके लिए भी कहता है कि मैं उनके चाल चलन का दंड दूंगा। होशे 4 अध्याय उसके 10 पद में आगे लिखा है, वे खाएंगे तो सही परंतु तृप्त न होंगे, और वेश्यागमन तो करेंगे परंतु न बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा की ओर मन लगाना छोड़ दिया है। लिखा है, वे खाएंगे तो सही परंतु तृप्त न होंगे, यह अकाल की भविष्यवाणी है। परमेश्वर हमें भी चेतावनी दे चुका है, परंतु हमारे कानों पर जूं नहीं रेंगती। हमें शांति की अपेक्षा परेशानियां मिल रही हैं। आगे वह कहता है, वे वेश्यागमन तो करेंगे परंतु न बढ़ेंगे। मैं जानता हूं कि जब मैं कहता हूं कि आप यदि परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार विवाह में यौन संबंध का आनंद न लें, तो आप यौन संबंध का आनंद कहीं और नहीं ले सकते। यदि आप अपनी पत्नी से प्रेम करेंगे तो आपकी वृद्धि होगी, आपको आशीष प्राप्त होगा। विवाह के बाहर के यौन संबंध क्षणिक आनंद के होते हैं और आप में आत्मग्लानि उत्पन्न करते हैं। आप जानते हैं और परमेश्वर जानता है, अतः परमेश्वर यहां इसे स्पष्ट कर रहा है कि आपके परिवार में आशीष नहीं आएगा। होशे 4 अध्याय के 11 पद में लिखा है, वेश्यागमन और दाख मधु और ताजा दाख मधु, ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। आज हमारी समस्याओं को देखा जाए तो इसके 2 कारण हैं, वे विचार और शराब। इन्हीं के कारण मनुष्य झूठ बोलता है और गलत काम करता है। एक या दो ही नहीं, संपूर्ण जन समूह इसका दोषी है। किसी ने कहा है कि आप किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। यह कैसी दुखद टिप्पणी है, यह नई नैतिकता है। इसराइल में तो इससे सफलता नहीं मिली, उन्होंने भी परमेश्वर के वचन का त्याग करके नया मार्ग अपनाया था। उत्तरी राज्य में तो पाप का भंडार था, उन्होंने परमेश्वर के स्थान पर 2 बछड़ों की पूजा की, बाल देवता के लिए उन्होंने पूजा की। बाल की पूजा तो पूर्ण रूप से दुष्कर्मों से भरी थी, परंतु वे उन्हीं का अनुसरण कर रहे थे। होशे 4 अध्याय के 12 पद में हम पढ़ते हैं, मेरी प्रजा के लोग काठ के पुतले से प्रश्न करते हैं और उनकी छड़ी उनको भविष्य बताती है, क्योंकि छिनाला करने वाली आत्मा ने उन्हें बहकाया है और वे अपने परमेश्वर की अधीनता छोड़कर छिनाला करते हैं। यहां वह आत्मिक व्यभिचार की बात कर रहा है, परमेश्वर का त्याग। वे मूर्तियों से भविष्य पूछते हैं। एक गुरु ने तो स्पष्ट कहा था कि वह केवल धनोपार्जन के लिए अर्थात धन कमाने के लिए यह सब कुछ करता है और धर्म का स्वांग एक घोटाला है, परंतु अनेकों ने उसका अनुसरण किया। आज मनुष्य शैतान की उपासना भी करता है। शैतान की पूजा हमारे देश का कोई भला नहीं कर रही है। इसराइल में मूर्ति पूजा ही के कारण भ्रष्टाचार बढ़ा और परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया। होशे 4 अध्याय के 13 पद में लिखा है, बांझ चिनार और छोटे बांझ वृक्षों की छाया अच्छी होती है, इसलिए वे उनके नीचे और पहाड़ों की चोटियों पर यज्ञ करते और टीलों पर धूप जलाते हैं। इस कारण तुम्हारी बेटियां चिनाल और तुम्हारी बहुएं वे विचारनी हो गई हैं। मेरे प्रियो, लिखा है कि उनकी बहुएं छिनाल हो गई हैं। वे पहाड़ों के ऊपर वृक्ष कुंजों में अपनी मूर्तियां स्थापित करते थे, वही उनकी उपासना के केंद्र थे। वहां ठंडा होता था और वह मनोरम स्थान था। इस कारण तुम्हारी बेटियां छिनाल और तुम्हारी बहुएं वे विचारनी हो गई हैं। हमारी आज की उपासना का लक्ष्य लालच और लोभ है और अनेक परिवार संसार में सफल भी हैं। सब अधिकाधिक सुख सुविधा की खोज में हैं और बहाना बनाते हैं कि वे अपनी संतान के लिए कर रहे हैं, परंतु उनकी संतान अकस्मात ही घर छोड़कर चली जाती है। आज असंख्य युवा यहां वहां भटक रहे हैं। हवाई द्वीपों में देखें, एक बार एथेंस में एक युवक और एक युवती से बातें करते हुए मेरे एक मित्र ने कहा, वे जो किशोर थे और नशे की हालत में थे, उन्होंने कहा, हम कुछ नहीं हैं, हमारी पहचान नहीं है और हम परिव्यक्त हैं, हमें छोड़ दिया गया है। उन्हें क्या हो गया है? समस्या उनके परिवार में है, उनके माता पिता के पैसों के उपासक में है, क्योंकि वे बच्चों को छोड़ पैसों के पीछे हैं। हम जीवित और सच्चे परमेश्वर को त्याग चुके हैं, भूल चुके हैं, हम उसकी आराधना नहीं करते हैं। हमें हमारे मोक्षक उद्धारकर्ता के पास आना होगा, वही हमें मुक्ति दिलाएगा। आज दुख के साथ हमें यह कहना पड़ रहा है कि माता पिता पैसे कमाने में इतने लवलीन हो गए हैं कि वे अपने बच्चों के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं, और यही कारण है कि घर में पैसे आ तो रहे हैं परंतु बच्चे घर से निकल जा रहे हैं। आज आपके पास भी संभलने का अवसर है कि आप परमेश्वर की ओर फिर जाएं। मेरे प्रियो, हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के धीरज का बांध टूट गया है और उसने कहा है कि वे पाप करते जाते हैं, इसलिए मैं उनके वैभव को उनके अपमान में बदल दूंगा, मैं उन्हें उनके कामों के अनुकूल बदला दूंगा, उनके चाल चलन का दंड दूंगा। वे खाकर भी तृप्त नहीं होते हैं, वे शराब पीते हैं, वेश्यागमन करते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, वे मूर्तियों से भविष्य पूछते हैं, वे पहाड़ों पर पूजा करते हैं, उनकी पुत्रियां और बहुएं वे विचारनी हो गई हैं। दोष तो उनके पतियों का है क्योंकि वे देवदासियों के साथ वे विचार करते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा घिनौना काम वे लोग कर रहे थे जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें मना किया था। होशे 4:16 में लिखा हुआ है, क्योंकि इसराइल ने हठीली कलोर के समान हट किया है, क्या अब यहोवा उन्हें भेड़ के बच्चे के समान लंबे चौड़े मैदान में चराएगा? बिछड़ना वास्तव में है क्या? अधिकांश लोगों के विचार में आप प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बाद कलीसिया की सदस्यता ले लेते हैं और जब इसके बाद आप पाप में गिर जाते हैं तो यह बिछड़ना है। परमेश्वर उदाहरण के साथ बताता है कि आप इसके अर्थ से चूक ना जाएं। इसराइल ने हठीली कलोर के समान हट किया है। जब मैं छोटा था तब हमारे पड़ोस में एक पड़ोसी रहते थे, मैं उसके दोनों लड़कों के साथ खेलता था क्योंकि वे मेरे ही आयु के थे। हम गाय के बछड़ों पर सवारी करते थे और वह पड़ोसी जब उन बछड़ों को ट्रक में चढ़ाता था तब वह एक लकड़ी का तख्ता भूमि पर और ट्रक से जोड़कर उन बछड़ों को ऊपर खींचता था। एक मनुष्य उन्हें पीछे से धक्का मारता था, शायद आपने भी देखा होगा। बछड़े आधी ऊंचाई चढ़ने के बाद आगे के पैरों को कठोर कर लेते थे और होता यह था कि ऊपर चढ़ने की अपेक्षा वे पीछे फिसलने लगते थे। मेरे मित्रों, यही पिछड़ना है। इसराइल भी ऐसा ही करता था, वह परमेश्वर के पास आने की अपेक्षा अपने पांवों को कठोर करके पीछे फिसलने लग गया था। परमेश्वर से विमुख होना पिछड़ना है, हट करना है। आप कहते हैं, मैं परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानूंगा। आप अपना मन कठोर कर लेते हैं, आप परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चलते हैं, तो आप हठीले हैं, आप पिछड़ने लगते हैं। मेरे प्रियो, हठीला शब्द केवल यर्मिया और होशे ने ही काम में लिया है। क्योंकि दोनों ही बंधुआई में जाने वाले राष्ट्रों में भविष्यवाणी कर रहे थे। इसराइल और यहूदा दोनों ही हठीले थे। उन्होंने परमेश्वर की अगुवाई से इनकार किया। वे परमेश्वर की ओर फिरने को तैयार नहीं थे। आज हम में से कई लोग सच्चाई को जानने के बावजूद भी परमेश्वर की निकटता में आना नहीं चाहते। वे संसार की उन भोग विलासों में अपना जीवन बिताना चाहते हैं। मेरे प्रियो, आज आपके पास भी अवसर है कि आप हठीले न बने, परंतु परमेश्वर के पास आ जाएं। होशे 4 अध्याय उसके 17 पद में लिखा हुआ है, एप्रेम मूर्तों का संगी हो गया है, इसलिए उसको रहने दो। ध्यान दीजिए, एप्रेम शब्द इस पुस्तक में 36 बार आया है। परमेश्वर ने 10 गोत्रों के लिए यही एक नाम चुना था। मैं सदा ही सोचता हूं कि परमेश्वर इस नाम को स्नेहपूर्वक काम में लेता है या उपहास से काम में लेता है। मेरा निष्कर्ष है कि यह उसका हार्दिक नाम है जो वह उत्तरी राज्य को देता है। ये 10 गोत्र वास्तव में विद्रोही थे। उनका अपना नाम नहीं था। वह राष्ट्र तो वास्तव में यहूदा था। अतः मेरे विचार में परमेश्वर ने उन्हें यह नाम प्रेम से दिया था। अतः यह नाम एप्रेम होशे की पुस्तक में उत्तरी राज्य के लिए आया है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे होशे 4 अध्याय उसके 18 पद। लिखा है, वे जब दाख मधु पी चुकते हैं तब वेश्यागमन में लग जाते हैं। उनके प्रधान लोग निरादर होने से अधिक प्रीति रखते हैं। लिखा है, दाख मधु पी चुकते हैं। पीते पीते आप अपने संयम को खोने लगते हैं। मेरे मित्रों, यह रोग नहीं परंतु पाप है। वेश्यागमन में लग जाते हैं। उनके प्रधान लोग वेश्यागमन में अधिक प्रीति रखते हैं, लगाव रखते हैं। आज भी हमारे बड़े लोग अपशब्द काम में लेते हैं और शराब पीते हैं। वे आदर से बढ़कर अनादर को अच्छा समझते हैं। होशे 4 अध्याय उसके 19 पद में, जो इस अध्याय का अंतिम पद है, हम पढ़ते हैं, आंधी उनको अपने पंखों में बांधकर उड़ा ले जाएगी और उनके बलिदानों के कारण उनकी आशा टूट जाएगी। मेरे प्रियो, मनुष्य किसी भी धार्मिक शिक्षा में बह जाता है। परमेश्वर कहता है कि उनकी आशा टूट जाएगी, वे लज्जित होंगे। आज हम में से कितने लोग आशा रखते हैं परंतु परमेश्वर की संगति में नहीं रहते, और यही कारण है कि उनकी आशा टूट जाती है। वे लज्जित होते हैं और तब फिर कर वे परमेश्वर को भी दोषी ठहराते हैं। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि इसी के साथ अध्याय 4 समाप्त होता है, और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 5 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। अध्याय 5 भी इसराइल के पापों की ही चर्चा करता है और उन पर आने वाले दंड की भविष्यवाणी करता है। अध्याय 5 धर्मशास्त्र का एक मनोरम अध्याय नहीं है। जी हाँ, हमें होशे की पुस्तक के अध्ययन में होशे की पृष्ठभूमि का स्मरण रखना है। युवावस्था में उसे एक सुंदर युवती से प्रेम हो गया था, परंतु वह युवती वेश्या बन गई। मेरे विचार में वह पैसों की लालच में इस धंधे में आ गई थी। सुख विलास के लिए उसे बहुत पैसे चाहिए थे और पैसे कमाने का इससे अच्छा साधन और कोई नहीं था। परंतु उसकी वेश्यावृत्ति के उपरांत भी परमेश्वर ने होशे को उससे विवाह करने को कहा। अतः होशे ने उससे विवाह किया। वह उससे प्रेम तो करता ही था। विवाह के बाद उसने 3 बच्चों को जन्म दिया और फिर वेश्यावृत्ति में लौट गई। परंतु होशे ने जाकर उसको दाम देकर वेश्यालय से छुड़ा लिया और अपने घर ले आया। होशे का दिल दुख से भरा था। उसका परिवार भी टूट गया था। मेरे प्रियो, उस पृष्ठभूमि और दुखद अनुभव के साथ यशाया ने इसराइल को परमेश्वर का संदेश सुनाया। यहोवा कहता है कि तुम व्यभिचारी हो, तुमने परमेश्वर के साथ व्यभिचार का पाप किया है, तुमने परमेश्वर को धोखा दिया है। परमेश्वर के दुख को मैं भली भांति समझ सकता हूं। वह तुझसे, तुमसे प्रेम करता है, वह तुम्हें गलत मार्ग पर कभी नहीं जाने देगा, परंतु तुम्हारे पापों का दंड वह तुम्हें अवश्य देगा। परमेश्वर सबसे पहले अगुओं को दोष देता है, याजकों को और राजा को। वे देश के कोने कोने में मूर्ति पूजा करते थे। याजक और राजा भी जनता के लिए आदर्श नहीं थे, वे भी उनके पतित स्तर पर आ गए थे। वहां हत्या, उत्पात, लड़ाइयां थी। अतः परमेश्वर कहता है, मैं एप्रेम का भेद जानता हूं और इसराइल की दशा मुझसे छिपी नहीं है। हे एप्रेम, तूने छिनाला किया और इसराइल अशुद्ध हुआ है। जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी ना होंगे, तब तक मैं अपने स्थान को ना लौटूंगा, और जब वे संकट में पड़ेंगे तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें आगाह करता है, हमें चेतावनी देता है कि हम अपने उन पापमय जीवन से फिरकर परमेश्वर की ओर आ जाएं, क्योंकि वह आज मुझसे और आपसे भी यही कहता है कि जब तक हम उसके पीछे ना आ जाएं, अपने पापों से प्रायश्चित ना कर लें, वह अपने स्थान को ना लौटेगा। यह क्या ही सुंदर अवसर हम सबके लिए है कि हम उस परमेश्वर के पास आ जाएं, अपने पापपूर्ण जीवन को हम छोड़कर उसके पवित्र जीवन में प्रवेश करें। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने परमेश्वर के वचन से अपने आत्मिक जीवन में लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल ID है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
विमुख हुआ पापी जीवन से, विमुख हुआ पापी जीवन से, अपने न असहाय क्षणों में, अपने न असहाय क्षणों में आया हूँ मैं पास तुम्हारे, मुझे जगह दो यीशु के चरणों में, क्षमा करो